नमस्ते दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले कड़ी में हम मेमोरी के ऊपर बात कर रहे थे। गीता में बहुत सुंदर कहा था, ये डॉक्टर सचिन ने हमें बताया कि किस तरह से कर्म में कुशलता लाना ये योग है। यानी मेडिटेशन जब अच्छा रहता है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा बढ़ता है, कर्म के अंदर हमारी कुशलता आती है। इसी बात पर हम और आगे चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में भी। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ स्टूडियो में है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते।
ओम शांति।
हम मेमोरी के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आपने एक बात मेंशन किया था कि हम प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाते हुए कैसे एक बात पर वन टाइम फोकस करें, एट ए टाइम हम एक ही टास्क पर हम फोकस करें तो हमारी मेमोरी इम्प्रूव हो सकती है, हमारे विचारों की दिशा जो है बार बार चेंज होती है वो भी कम हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कम समय में हमारे पास टास्क ज्यादा होते हैं, वो टाइम की डिमांड होती है, हमारा जॉब रिक्वायरमेंट होता है, तो ऐसे समय पर हम फिर कैसे मैनेज करें?
ये सवाल जो आपने पूछा है ये मुझे भी कई जगह पर पूछा जाता है जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन लेते हैं, कि खास करके आज की वर्किंग वुमेन है, क्योंकि आज ऐसा समय है कि हस्बैंड वाइफ पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है, पर भारत में घर संभालने की जिम्मेवारी ज्यादा माता और बहनों पर होती है, तो उनको ऑफिस के साथ में घर को भी संभालना होता है। मैंने एक चित्र भी देखा था कि एक औरत के जैसे 8 हाथ दिखाए हुए हैं, शायद अष्टभुजाधारी उनको ही कहा जाता है। कई बार ये प्लानिंग करना पड़ता है हमको कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वी कैनॉट मैनेज, तो डेफिनेटली ये सवाल आता है। लेकिन फिर भी एक साथ अनेक कामों के ऊपर ध्यान रखना कठिन होता है, उससे प्रेशर बढ़ सकता है या गुस्सा बढ़ सकता है, स्पेशली जब आप लेट होते हो। क्योंकि ऐसी केस हुई एक मुंबई में कि कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उसको घर में सुबह पानी भी भरना है, नाश्ता भी बनाना है, अपने लिए पति के लिए ड्यूटी पर जाना है, बच्चे का होमवर्क करना है,
स्कूल में छोड़ना,
उसको स्कूल में छोड़ना है, नींद पूरी नहीं हुई है उसका प्रेशर, या पहले दिन के काम का प्रेशर, फिर रात में उसको कंप्लीट करके रात को लेट सोए सुबह जल्दी उठे उसका प्रेशर, और एक दिन का नहीं कि कई दिन का होता है, बिल्डअप होता है, और सुबह जल्दबाजी है, सब काम पूरे करने हैं और उसमें वो सब्जी काट रही है, हाथ में चाकू है, सामने बेटी का होमवर्क ले रहे हैं, अभी छोटी बच्ची है, उससे गलती हो रही है, उसको होमवर्क भी लेना है, प्रेशर है काम का कि मुझे पूरा करके ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि लेट गए तो लेट मार्क लगेगा
जी,
ठीक है ना। तो वो गलती करती है बेटी और ये उसको बोलते देख फिर से गलती मत करना, तेरे को समझा है ना, हाथ में चाकू है, उसी के साथ वो बोल रही है
जी।
एक बार गलती करती है वो फिर से सब्जी काटते है, शी इज ट्राइंग टू फोकस, और उसको साइमल्टेनियसली ये सब चीजों के बारे में उसके बैक ऑफ माइंड पे चल रहा है। जो आप कह रहे हैं ना वो प्रायोरिटी साथ में है, सभी है, पानी भी भरना है, नाश्ता भी बनाना है, फिर बच्चे का होमवर्क लेके उसको स्कूल छोड़ना है, मेरे को भी ऑफिस में पहुंचना है
जी।
ये 5 काम एक साथ चल रहे हैं मेरे अंदर माइंड के अंदर, और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है जो कि पिछले 2-3 दिनों से एडअप हो रही है, वीक डेज का बीच का दिन है, और बच्चे गलती कर रहे, एक बार मैंने कहा, 2 बार का, तीसरे बार उसने गलती की, मेरा जो स्विच है यहाँ का वो ऑफ हो गया, मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो उस समय उसने गलती की, मतलब मेरे को पूरा करना है काम और आप उसमें विघ्न डाल रहे हो, आपको मैं समझा रहे हो प्यार से और आपसे नहीं हो पा रहा है, मेरा कंट्रोल चला गया, वही चाकू मैंने उसको पेट में डाल दिया। कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस अभी उसने उस मोमेंट में जो किया
जी।
वो उस मोमेंट में उसका कंट्रोल चला गया था बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग, और वो होने के कुछ क्षण बाद उसको पता चला, बट बाय द टाइम शी वाज डेड।
माय गॉड।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर माँ के साथ ऐसा होगा,
सही,
पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर आप अंदर से रिलैक्स नहीं है और आप मल्टीटास्किंग करने जा रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग की वजह से इट इज पॉसिबल, माना ऐसा संभव है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाए
जी।
मैं ये नहीं कह रहा, मेरा भी कई दोस्त है जो सर्जन है, तो उसने मेरे को कहा कि सचिन हम जब आईसीयू में रहते हैं तो 4-5 पेशेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चारों सीरियस है, अभी मेरे को देखना है कि 4 में से मैं किसको बचा सकता हूँ
जी।
तो मेरे को वो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पेशेंट के प्रति मैं निर्दय हूँ या मुझे उनकी चिंता नहीं है, पर मेरे को डिसीजन क्विक लेना होता है सेकेंड में। चारों काम मैं साइमल्टेनियसली ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स कम है, नर्स कम है, और उसमें ही मेरे को वो चलाना है
जी।
तो मैं ये कर रहा हूँ मल्टीटास्किंग एक साथ, और उसके साथ मेरे को ये भी पता है कि मेरा ऑपरेशन है, आई एम ए सर्जन, वो पेशेंट को अंदर लिया कि मैं उसकी तैयारी, मतलब यहाँ तो जिंदगी मरण का खेल है
जी।
तो मेरे को वो करते समय मैं देखता हूँ कि चारों में से कौन बचने वाला है, उसके ऊपर मेरा ध्यान जाता है। तो मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी चाहिए, मेरा डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत अच्छा चाहिए, और मैं ऐसा भी होता है कि मैं बहुत कोशिश करके मैं किसी को भी बचा नहीं पाता हूँ। आप स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं एक कार्डियक सर्जन का, और मैंने देखा कि उसका खुद का बाईपास सर्जरी हो गया, ही हिमसेल्फ इज अ कार्डियक सर्जन, वेरी गुड पर्सन। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल है, आपने जो सवाल पूछा इज 100% करेक्ट। यहाँ पर ही मुझे लगता है मेडिटेशन काम करता है। मैं इसको थोड़ा गहराई से खोलने की कोशिश करूंगा कि मल्टीटास्किंग करना और उस समय रिलैक्स रहना ये कला है, लेकिन कैसे हो सकता है? जब आप अंदर से शांत है तभी आप मल्टीटास्किंग में सफल हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग में आप एक साथ 5 काम करने जाओ तो प्रेशर उनको आता है जिनके अंदर से, माइंड के अंदर से एक व्यक्ति या कोई तो है, आवाज है जो आपको कह रहा है पुश रन जल्दी करो, नहीं हुआ तो फेल हो जाओगे, है ना, मेरी ट्रेन छूट जाएगी या मैं फेल हो जाऊंगा, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये जो प्रेशर आ रहा है अंदर से उसको शांत हो जाता है और मेरे अंदर क्लैरिटी आ जाती है, और मेरे को प्रायोरिटी माने कौन सा काम महत्वपूर्ण है वो मेरे अंदर पता चलता है
जी।
तो जैसे वो मदर का एग्जाम्पल दिया, तो आपको डिसाइड करना है कि आपका ऑफिस प्रायोरिटी है, आपकी बेटी प्रायोरिटी है, आपका नाश्ता प्रायोरिटी है, क्या है उसमें 1, 2, 3, 4 मेरे को करना आना चाहिए
जस्ट विद इन अ सेकेंड।
हाँ,
ऐसा नहीं कि हम उसको बहुत लंबा पोस्टपोन कर रहे हैं कि अभी प्रायोरिटी नहीं, बट जस्ट फॉर दैट सेकेंड वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज माय प्रायोरिटी।
उसमें ऐसा जरूर होगा कि आप सब में नहीं जीत सकते हैं, आप समझ रहे
जी।
तो उस समय अगर मैं होता तो शायद मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी होती, क्योंकि जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहे हूँ, ठीक है ना, या मेरी प्रायोरिटी नाश्ते के बजाय मेरी प्रायोरिटी होती मेरे जॉब में टाइम पे पहुंचने की, क्योंकि नाश्ता अगर मैं घर पे नहीं बना पाए मैं बाहर से ले सकती हूँ, उसमें ऑप्शन मेरे को अवेलेबल है
जी।
तो जहाँ पे मुझे ऑप्शन है मुझे वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर वो डिसीजन मेकिंग मेरी कैपेसिटी काम करनी चाहिए, ठीक है ना। पानी अगर भरने का, और मेरे को ऐसे ही लगता है कि बहुत है, तो मैं देखूं कि ये सब काम की वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मैं एक नौकरानी रखूंगी घर पे एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स, या अगर बच्चे को मैं संभाल नहीं पा रहा, समवन हु टेक्स केयर ऑफ दैट किड, ये डिसीजन मेरे को लेना चाहिए। मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकती या मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती जब मुझे ये लगता है, और ये बुद्धि मेरी कब काम करेगी? जब मैं अंदर से शांत हूँ, आप समझ रहे
जी।
विचार और समय, जो आपने कहा ना इट इज अ प्रेशर ऑफ टाइम, एक्चुअली लोग इसको टाइम मैनेजमेंट में लेते हैं कि अपने समय का कैसे मैनेज करना, लेकिन आई थिंक समय मैनेज करना संकल्पों को मैनेज करने के बराबर है, क्योंकि समय और संकल्प का गहरा कनेक्शन है
जी।
जब मेरे संकल्प या विचार बहुत स्पीड से चल रहे होते हैं मेरे पास समय कम होता है, और वही मेरे संकल्प अगर स्लो होते हैं तो मेरे पास टाइम एक्सपांड हो जाता है।
बहुत गहरी बात है ये कि अगर मेरे संकल्प स्पीड से है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे टाइम बहुत भाग रहा है, लेकिन अगर मेरे संकल्प स्लो है तो मुझे लगता है मेरा टाइम भी स्लो चल रहा है। वेरी बहुत गहरा कनेक्शन।
मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस स्टेज से जा चुका हूँ। हम जिस फील्ड से है वहाँ पे अचीवमेंट को महत्व है, आपको हर चीज में जीतना है, एक रेस है, हम भाग रहे हैं और हर रेस में हमको जीतना है। पर जैसे ही मैंने मेडिटेशन चालू किया मैंने रियलाइज किया इतना क्यों भाग रहा हूँ मैं, और उस समय मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि तुझे क्या चाहिए, व्हाट इज योर अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, आप किस लिए भाग रहे हैं? तब जब अंदर से जवाब आया तब आई कैन प्रायोरिटाइज, और फिर मैंने स्पीड को कम कर दिया कॉन्शियसली। मैंने देखा कि मैं अंदर ही अंदर अपने स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ और सब में जीतना चाहता हूँ और सब में फर्स्ट आना चाहता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल.
यस, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल.
इट इज टैक्सिंग माय सिस्टम, क्योंकि जैसे मेरा काम नहीं पूरा हो रहा है जो मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, तो जो जो मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है उसकी खैर नहीं.
हम मेमोरी में एक्चुअली बात कर रहे थे, मेमोरी के ऊपर, वो हमारा फिर भूलना.
हाँ,
ये बहुत कॉमन हो जाता है.
भूल भी जाता हूँ और मैं गुस्सा निकालता हूँ दूसरों के ऊपर. और ये सब मैंने देखा, जैसे ही मैंने मेरा स्पीड कम किया, एक क्लैरिटी आ गई कि मेरे लिए क्या जरूरी है. तो फिर मैंने देखा, मेरा जब क्लैरिटी आ रही है, तो जो मैं एक घंटे के अंदर मैं 10 चीज करने जा रहा हूँ, मैंने देखा 10 में से 5 को मैं निकाल सकता हूँ, मैं 5 चीज अच्छी तरह से कर सकता हूँ.
ये भी देखा कि हम भूलते हैं लेकिन गुस्सा फिर औरों पे निकालते हैं.
yes.
तो खुद भूलना फिर दूसरों पे गुस्सा निकालना, yeah. इसका भी गहरा कनेक्शन है.
तो इन सब को हम मैनेज कर सकते हैं जब हम यहाँ पे स्लो डाउन होते हैं, एक क्लैरिटी आती है. और मेरे को ऐसे लगता है कि यस, ये मेरे लिए जरूरी है. तो आप जो बात कर रही है उसमें प्रायोरिटी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये टाइम मैनेजमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं कि प्रायर क्या, मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण बात कौन सी है.
जी,
इसको कहते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. स्टीवन कोवे नाम का जो बहुत फेमस ऑथर होके गया, उसने ये नाम दिया कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट नाम का बुक लिखा है जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हो गया. उसमें उन्होंने लिखा है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है वो आपको पहला करना चाहिए. ठीक है ना? तो इस केस में अगर मेरा सैलरी आना जरूरी है, अगर मैं लेट पहुंचता हूँ मेरा आधा सैलरी जाता है, तो मुझे वो प्रायोरिटी देनी चाहिए. अगर मैं बेटी, जिसके लिए मैं कर रही हूँ सब कुछ ताकि मेरी बेटी अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा उसको पढ़ाई हो और भविष्य में अच्छी इंसान बने, तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी है. तो बाकी की चीजों को मैं लास्ट प्रायोरिटी दूंगा. आप समझ रहे हैं?
जी जी.
तो ये मेरे पास क्लैरिटी कब आएगी, जब मैं स्लो डाउन होऊंगा और अपने आप से बात करूंगा. और मेडिटेशन एग्जैक्टली यहाँ पे मदद करता है.
ओके, आपने ये बात बहुत ही सुंदर रीति से हमको बताई कि किस तरह से मेडिटेशन से प्रायोरिटी करते हुए हम लोग वर्क को फर्स्ट प्लेस पे, जो जरूरी है उसको आगे रखें हम. और भी मेमोरी की कोई टेक्निक्स है जिसकी वजह से प्रैक्टिकल में हम लोग डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन या हम कहेंगे डिबेट होता है वो थोड़ा कम करें?
पहले तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप रिलेशनशिप्स की कह रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और साथ में बैठ के बहुत अच्छी तरह से रेस्पेक्टफुली बात करके, है ना, प्लान करना चाहिए. ये बातें टाइम मैनेजमेंट के साथ ही जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति एक चीज भूल जाता है, ठीक है ना, और बार बार उससे वही गलती हो रही है, तो सामने वाले को ऐसे लगता है इसको इतनी अकल नहीं, बार बार क्यों ऐसा करता है. एक बार मैं समझ सकता हूँ, दो बार समझ सकता हूँ, लेकिन बार बार क्यों होता है. तो उसके हिसाब से ये ना समझी है. इट शुड नॉट हैपन फ्रॉम ए एजुकेटेड पर्सन.
नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, पेन है ना, दिखेगी फिर वहां से उठा के लेके आएगी. ऐसा होगा 3 दिन के अंदर पर्स में बहुत सारे पेन आ जाएंगे, उसको भी पता नहीं कहाँ से आए, और फिर अचानक से जहां जाएगी वहां पे फिर से छोड़ के आएगी. इसके ऊपर से हस्बैंड को इतना इरिटेशन होता है, उसके हस्बैंड को, तो इतनी छोटी बात है तो हस्बैंड नहीं समझ सकता कि कोई बात नहीं अब छोटी बातें छोड़ दो. वो कहती है मेरी ये आदत नहीं जाएगी, मुझे समझ में नहीं आता. फिर पेन छोड़ के भी आती है, 3 दिन के बाद फिर से पर्स पूरा खाली हो जाता है. छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन इसको कैसे
इस
कम करें?
ऊपर से उनके अंदर झगड़ा हो रहा है,
कभी कभी डिबेट होता है, फिर कभी छोड़ देते हैं, ये चल रहा है बहुत समय से चल रहा है.
नहीं, मेरे हिसाब से क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की वैल्यू सिस्टम होती है कि क्या जायज है और क्या ठीक नहीं है. जो बात उसके युगल के लिए ठीक नहीं लग रही, उसके लिए प्राइम इम्पोर्टेंस हो सकती है, ठीक है ना. तो किसी को तो बेंड होना पड़ेगा यहाँ पे, किसी को समझदारी से काम लेना पड़ेगा. अभी यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है, पेन उठाना इज नॉट अ गुड मैनर.
एक्चुअल में उसे याद नहीं रहता, शी एग्रीज,
शी हैज टू लर्न द टेक्निक. क्योंकि आप कल्पना करो कि जिसका पेन उठाया है या कोई घर पे आता है और वो पूछता है इतने सारे पेन तुम्हारे पास कहाँ से आए. क्योंकि एक एक बीमारी है साइकोलॉजी में जिसको हम क्लेप्टोमेनिया कहते हैं, उसमें भी ऐसा होता है. उसमें भी व्यक्ति क्या करती है, कहाँ से भी चीजें उठा के अपने घर में लाके रखती है.
ये फिर छोड़ भी देते हैं.
हाँ, वो ठीक है, पर लाके रखना ये नॉर्मल नहीं है. आप समझ रहे हैं किसी की चीज को. आप सोचो कि जिसकी चीज गई है उसके क्या संकल्प चल रहे होंगे. वो संकल्प तो आएंगे ना आपके पास कि मैंने इसको पेन दिया था. चलो एक का हो गया, ठीक है. आप जिस तरह से बोल रहे कई लोगों के वो उठाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए मेहनत उसको करना है। यहाँ पर पति जो कह रहा है उसके अच्छे के लिए कह रहा है, मतलब पति शांत हो सकता है उसको समझाने से, लेकिन उस युगल को सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे मेरी आदत बदलनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें हम ये करते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता था, रेलवे स्टेशन पे टिकट निकालने को जाते हैं तो कई लोगों के पास पेन नहीं होता है, तो हमारा पेन लेते थे और पेन लेके गायब है ना, मेरा पेन चला जाता था। फिर मैंने किसी से सीखा तो आप क्या करो कि पेन का ना आधा देने का, कैप नहीं देने का, तो वो कैप लगाने जाएगा तब वो आपके पास आएगा,
याद रहेगा उसको,
है ना। या फिर आपको अटेंशन रखना है कि आपके, क्योंकि वो फॉर्म उधर नहीं भरेगा, फॉर्म भरने के लिए कहीं और चला जाता है और आपको अपना काम भी करना है तो वो पेन चला जाता है
जी।
ऐसे समय पर आपको कुछ तो ऐसी बात करनी पड़ेगी जिससे लिए आपका ये चीज नहीं चला जाए। तो मैंने ये अटेंशन रखा कैप नहीं देने का, तो मैंने देखा मेरा पेन मेरे पास वापस, क्योंकि जैसे वो उसको कैप लगाने जाता है उसका भी ऐसे नहीं कि वो जानबूझ के लेके जा रहा है, वो भी भूल रहा है, उसको समझ में आया कि कैप नहीं है, मतलब मेरा नहीं, मेरे को रिटर्न करना है, वो थैंक्स बोल के चला जाता है। तो हमारा भाव कई बार अच्छा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं अटेंशन के साथ। तो मैं फिर से कह रहा हूँ जो पिछले एपिसोड में कहा कि आप जैसे मेडिटेशन करने लगेंगे आपका मन भागना कम हो जाएगा और आप सुप्रीमली फोकस रहेंगे प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर।
ओके।
तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मेडिटेशन की इस समय स्ट्रेस के समय मानी गई है। चाबी भूलना, मोबाइल भूलना या पेन भूलना, ये छोटी छोटी बातों से शुरुआत होती है, फिर वो बड़ी,
फिर बड़ा रूप लेती
और
है,
बड़ा रूप लेती है। और आप कल्पना करो अगर हस्बैंड वाइफ में रोज का इसके ऊपर झगड़ा हो रहा है कि तुम हमेशा चाबी भूलते हो, तुमको पता नहीं, हमेशा तुम्हारा मन कहाँ जाता है। अभी वो एक दिन ठीक है, रोज रोज का सुन के वो रिलेशनशिप में भी इफेक्ट आता है। फिर भले वो बोलते नहीं लेकिन अंदर से वो कड़वाहट रहती है कि अगर ये चाहे तो कर सकती है लेकिन ये करती नहीं है, करता नहीं है, जो भी हो दोनों तरफ से हो सकता है। तो अगर हम मेडिटेशन करके सुप्रीम प्रेजेंट मोमेंट में रहने का अभ्यास करें तो ये हो सकता है। और मैं इसके लिए एक एक्सरसाइज देता हूँ, टिप्स देता हूँ कि आप कुछ ऐसे एक्रोनिम बना ले। एक्रोनिम माने एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे हम महाराष्ट्र में है तो मराठी में हम कहते हैं मोरूचा पापा, माने मोरू नाम का ये बच्चों का नाम होता है, तो मोरूचा पापा ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है मोबाइल, रूमाल, चश्मा, पॉकेट और पर्स, ये पांच चीजें इसमें आ गई इस नाम में। तो हर बार घर से बाहर निकलते समय आते समय आपने मोरूचा पापा लिया या नहीं लिया, तो आप ऐसा एक एक्रोनिम बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म कि हमेशा आपको याद रहे। कई सोसाइटी में हमने क्या देखा है, नीचे गेट के ऊपर एक बोर्ड लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, जाने के पूर्व सोसाइटी छोड़ने के पहले, वो आंखों के सामने ही रहेगा, गैस बंद किया, नल का पाइप बंद किया या नहीं किया, क्योंकि एक व्यक्ति नल का खुला रखता है पूरा सोसाइटी का टाकी खाली हो जाता है, सबको सफर करना पड़ता है। और अगर गलती से आपने गैस खुला छोड़ दिया, अगर कहीं से आग लग गई फट गया तो सबका नुकसान होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोग ये भूलने लग गए, इसलिए इसको रिमाइंडर लगाया जाता है, वहाँ पे रिमाइंडर हो जहाँ से जाते समय आपको याद हो।
ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये सब चीजें हो रही है,
फास्ट भाग रहे हैं ना हम। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दरवाजा खोलने जाओ बंद करने, तो अपने अंदर की तरफ एक बहुत ऐसे बड़े इसमें लिख सकते हैं कि आपने ये किया क्या, 1 2 3 4 5 6, तो धीरे धीरे क्या होगा वो आपके संस्कार में आ जाएगा,
हैबिट बन जाएगा,
आपकी हैबिट बन जाएगी कि मैं घर पे आया 1 2 3 4 5 6 लाया, अच्छा घर से जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 किया या नहीं किया
जी।
एक बार आपकी आदत लग गई तो आदत से नेचुरल हो जाए,
शायद ये डिसिप्लिन से रिलेशन बहुत सुंदर भी हो सकते हैं।
और एक टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप भूलते हैं तो हर काम करने के वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड लाने की टेक्निक ये है, जैसे आप कार से उतरे हैं तो आपने कार को लॉक किया, आप खोलने जा रहे हैं, तो खोलते समय आप अपने आप से बात करो कि मैं इस समय चाबी से लॉक खोल रही हूँ, मतलब जो आप काम कर रहे हैं अपने साथ बात करके करो। फिर मैंने दरवाजा खोला, फिर खोलने के बाद मैं चाबी अपने स्थान पर रख रही हूँ, बात करते हुए करो, अभी मैं किचन की तरफ जा रही हूँ, हर क्षण आप अपने आप से बात करो। उससे क्या होगा, आपका नेचर बन जाएगा कि हर काम करते समय आप उधर ही है, कहीं और भटक नहीं रहे
जी।
तो ये मन का जो भटकना है, बात करने से आप उसको प्रेजेंट मोमेंट में ला रहे हैं। अगर आप कोई बात समझो, कार में कई सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो मैंने चाबी रखी, अच्छा मेरा मोबाइल अच्छा कार में रह गया, तो मैं मोबाइल लेके आ रहे, और मेरा मोबाइल जहां पे जरूरत है वहां मैंने चार्ज करने के लिए रख दिया। अभी मैं इस कमरे में जा रही हूँ, कमरे का दरवाजा खोल रही हूँ, अभी मैं किचन में जा रही हूँ, ऐसे बात करते हुए जाओ। इससे क्या होगा कि आप एक समय एक काम के ऊपर फोकस करेंगे और धीरे धीरे आपका रजिस्ट्रेशन इम्प्रूव होता जाएगा, आपको आदत लग जाएगी, फिर जो भूलने की आदत है वो कम होती जाएगी।
रिटेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रजिस्ट्रेशन सही होगा तो हमको स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, और रजिस्ट्रेशन सही होने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है। आज की पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जाने के पहले हम एक बार मेडिटेशन फिर से लेंगे।
अपने को आरामदायक स्थिति में लेकर जाए, और कोई महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं तो उससे दूर रहे, एकांत में बैठे रहे, अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर लेके जाए और शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दें। आप जागृत होते जा रहे हैं और आपका सिर से लेके पांव के अंगूठे तक का पूरा शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय का अभ्यास होने के कारण अपने आप आपकी ऊर्जा दो आंखों के बीच में एकाग्र हो रही है और आप महसूस कर रहे एक बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश, दिव्य सितारा दो आंखों के बीच में चमक रहा है। बहुत सहज आप शरीर के भान से दूर होते जा रहे हैं। आप एक दिव्य प्रकाश इस शरीर रूपी मंदिर में चमक रहे हैं, बिल्कुल शांत और रिलैक्स। शांति के सागर परमात्मा की शांति की लहरें स्वतः आपके तरफ आ रही हैं और आप महसूस कर रहे हो कि उसका प्रकाश आपके तरफ आ रहा है और आपके द्वारा संपूर्ण शरीर में फैल रहा है और बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो चुके। आज आपने महसूस किया कि जीवन में प्रायोरिटी या प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। मेरे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी है उसकी लिस्ट में बनाकर रखूंगी और उनके लिए मैं सर्वोत्तम समय दूंगी। मेरा जॉब, घर के सदस्य या परमात्मा, जैसे मेरी प्रायोरिटी है उस कार्य के लिए मैं समय अवश्य निकालूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा स्ट्रेस कम होते जा रहा है और मैंने ये भी महसूस किया कि मैं सभी काम एक साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ काम मैं अवश्य अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मेरी प्रायोरिटी क्लियर है, मेरी प्राथमिकता मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है और वर्तमान में रहने का मेरा संस्कार पक्का होते जा रहा है। हर कार्य करते वक्त मैं परमात्मा की याद में प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखते हुए करूंगा। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शांत और रिलैक्स। मेरा मन शांत हो चुका है और शरीर बिल्कुल रिलैक्स है और इसी अवस्था में मैं संपूर्ण दिवस भर रह सकता हूँ। ओम शांति शांति शांति
ओम शांति। आज की पूरी बातचीत के लिए आपके फिर से बहुत बहुत आभार। नमस्ते।
ओम शांति।
आज की इस पूरी बातचीत में हमने सबसे इम्पोर्टेंट ये जाना कि जब मेरे विचारों की स्पीड बहुत अधिक होती है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वक्त बहुत भाग रहा है या वक्त मेरे पास कम है। अगर मेरे विचारों की स्पीड कम होगी तो मुझे लगता है कि वक्त मेरे पास बहुत है। तो इस पर हम जरूर विचार करेंगे किस तरह इसका गहरा संबंध है। छोटी छोटी बातों में अनबन होती है, हम अपने वर्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। हमारी सबकी जिंदगी बहुत भागा दौड़ी की है, हमारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका है और जिसकी वजह से ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन राजयोग से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आज हमने जाना। आप इस पर विचार कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर हमारे फोन पर संपर्क कीजिए। हम नए सीक्रेट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।